पैसा मिलना है मेरी वाइफ को, लेकिन कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया या ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं और वो एक साथ जाते रहे तो दोनों चले गए, यानी कि इंश्योर चला गया और बेनिफिशियरी चला गया, तो उस केस में हम लोग ये सोच के दूसरे बेनिफिशरीज, सेकेंडरी बेनिफिशरीज अपॉइंट भी करते हैं, जिनको कंटिंजेंट बेनिफिशरी या सेकेंडरी बेनिफिशरी कहा जाता है। सरबत जी, तो वो बेनिफिशरी कौन हो सकता है? हमारे बच्चे हो सकते हैं।
अच्छा,
है ना, कि आदमी सोचता है कि भाई मेरी डेथ पे मेरी वाइफ को मिल जाए पैसे, और अगर हम दोनों चले गए तो बच्चों को मिल जाए पैसे।
लेकिन वो बच्चे खास एज तक उनका नाम लिखा जा सकता है जब वो एडल्ट हो जाते हैं? छोटे हों तो फिर
छोटे में भी लिख सकते हैं, बड़े में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब बच्चे नाबालिग होते हैं तब उनके लिए हमें एक ट्रस्टी बनाना पड़ता है, अगर हम उनका नाम लिखना चाहते हैं तो।
अच्छा।
ट्रस्टी, क्योंकि फिर वो ट्रस्टी उन बच्चों के ब्याह पे पैसे कलेक्ट करता है ना?
जी जी।
लेकिन अगर बच्चे हमारे नाबालिग नहीं है, बालिग हो चुके हैं एडल्ट बच्चे, उनको ट्रस्टी की जरूरत नहीं होती। सर बच्चे,
प्रदीप जी से इस वक्त हमारी बातचीत चल रही है। एवरी मंडे आप इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस कुछ एक टॉपिक लेकर आते हैं। प्रदीप जी का नंबर है 416-894-5872। प्रदीप जी, एक दफा अगर कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है तो क्या क्या चेंजेस उसमें हो सकती हैं?
इसमें सब तरह के चेंजेस हो सकते हैं सर बच्ची। पहली बात ये कि अब जैसे ओनर हूँ मैं किसी प्लान का, है ना, और इंश्योर्ड कोई और है, मेरी वाइफ है। अब ये भी तो हो सकता है कि ओनर की डेथ हो जाए या ओनर की हेल्थ इस काबिल ना रहे कि उस प्लान को कंट्रोल कर सके या मैनेज कर सके या उसमें तब्दीलियां कर सके। तो उसमें जिसमें ओनर और इंश्योर्ड दो अलग अलग शख्सियत होती हैं, उसमें सरबत जी ये बहुत अहम चीज है कि उसमें कंटिंजेंट ओनर भी अपॉइंट किया जाए।
अच्छा।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे के लिए प्लान लेता हूँ, उसका ओनर मैं हूँ और इंश्योर्ड है बच्चा। अब ये भी हो सकता है कि मेरी डेथ हो जाए या मैं मेरी हेल्थ खराब हो जाए, तो लेकिन प्लान तो फिर भी चलना है। तो कंटिंजेंट ओनर हम किसको बना सकते हैं? हम कंटिंजेंट ओनर बना सकते हैं, मैं बना सकता हूँ अपनी वाइफ को।
अच्छा।
कि बच्चा अगर छोटा और मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ उस प्लान की ओनरशिप संभाल लेगी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो गया और हम ये समझें कि वो हर तरह से काबिल हो गया अपने प्लान को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, तो हम ओनरशिप उसको पास कर सकते हैं डायरेक्ट, या हम उसको कंटिंजेंट ओनर बना सकते हैं चेंज करके, ताकि जब ओनर की डेथ हो वो खुद अपने ओनरशिप एज्यूम कर ले।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, फैमिली से रिलेटेड है कि अपनी अपने आप को जीते जी तो सारे ही करते हैं, हम रहते अपनी फैमिलीज के साथ है तो उनको प्रोटेक्ट करें अपनी ज़िंदगी में ही, और साथ बैठे हैं प्रदीप जी के साथ अगर रिव्यू करवाना है। प्रदीप जी, अगर आप रिव्यू करते हैं उसकी कोई फ़ीस है?
उसकी कोई फ़ीस नहीं है सरबत जी, कोई कॉस्ट नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है। और आपने पूछा जो सवाल, उसमें कुछ एक और चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि पेयर का चेंज। आज मैं पे कर रहा हूँ प्लान का।
अच्छा।
कल को हो सकता है मेरी वाइफ पे करना चाहे किसी प्लान को, तो वो पेयर बदला जा सकता है, है ना। तीसरी चीज क्या है? बेनिफिशियरी। आज मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे प्लान में अगर मेरी डेथ होती है तो वाइफ बेनिफिशियरी होनी चाहिए, पर वो भी जा सकती है, मेरे से पहले जा सकती है ना, तो दूसरा बेनिफिशियरी बनाना पड़ेगा। या लोगों की वो तलाक हो जाते हैं, है ना, या इस हालत में नहीं रहते लोग कि अब उनको पैसे की जरूरत है, किसी और को जरूरत ज्यादा है अपने हिसाब से, तो हम ये सारी ही चीजें बदल सकते हैं सिवाय इंश्योर्ड को छोड़कर। अच्छा। कुछ एक केसेस में इंश्योर्ड भी चेंज किया जा सकता है।
अच्छा।
तो ये है कि हर तरह के चेंज जो है वो मुनासिब हैं और उसको किया ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
आखिर में कुछ और प्रदीप जी ऐड करना चाहेंगे?
आखिर में यही कहना चाहूंगा, इंश्योरेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है हमें प्रोटेक्ट करने का हमारी जिंदगी में और हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को। बहुत कम पैसों से शुरुआत की जा सकती है।
सही।
ऊपर ज़्यादा ज़्यादा पैसे डालने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कम से कम में भी बेसिक शुरुआत हो सकती है। आगे चल के इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, हम प्लान को तब्दील कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं सरबत जी, लेकिन इसके लिए आपको एक बार मिलना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये प्लान आपके लिए किस तरह से बेस्ट पॉसिबल तरीके सर्व कर सके आपके अपने बजट में। तो कॉल करें 416-894-5872, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है।
हर तरह की इंश्योरेंस, चाहे आपने लाइफ इंश्योरेंस लेनी हो, क्रिटिकल इंश्योरेंस लेनी हो, विजिटर इंश्योरेंस लेनी हो, मॉर्गेज
डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेनी हो, बिजनेस इंश्योरेंसेस हैं,
हर तरह
मॉर्गेज इंश्योरेंस है, हर तरह के इंश्योरेंस,
हर तरह से आपको प्रदीप जी प्रोटेक्ट करेंगे और इनका जो इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर आपके सवालात को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। प्रदीप जी नंबर एक दफ़ा फिर दे दीजिए।
416-894-5872 सर्वर जी,
416-894-5872। प्रदीप जी हमेशा की तरह कोई ना कोई गीत लेकर आते हैं और अभी वैलेंटाइन गुजरी है और प्रदीप जी जो है वैलेंटाइन से रिलेटेड बड़ा ही प्यारा जबरदस्त सॉन्ग लेकर आए हैं। प्रदीप जी किसी को डेडिकेट करना है ये सॉन्ग?
नहीं जी, आपके सारे लिसनर्स को डेडिकेट करना है, वो उनसे इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए कुछ इस समय है ही नहीं।
हमेशा की तरह प्रदीप जी अपने लिसनर्स के लिए लेकर आते हैं जबरदस्त सॉन्ग, तो ये सॉन्ग है रोको रोको सॉन्ग। हाँ, दिल को हजार बार रोको रोको,
रोका रोका रोका।
अच्छा जी सुनते हैं, चलें
अलीशा चनोई की आवाज, मीठी आवाज में।
हजार बार टोका रोका रुका, दिल को हजार बार टोका टोका टोका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना धोखा न खाना, धोखा है प्यार यार प्यार है धोखा। हजार बार रोका रोका रोका।
तुसी कनाडा तो इंडिया पैसे भेजना चाहते हो ते ओ भी छेती तो छेती वधिया रेट्स ते ते आराम नाल कर बैठे ए सब मिलेगा हुन थानू बिना कॉम्प्रोमाइज तो। हुने करो डाउनलोड जूम मनी ट्रांसफर ऐप फ्रॉम पेपैल ते अपने फोन तो करो पैसे ट्रांसफर वधिया एक्सचेंज रेट्स दे नाल बैंक डिपॉजिट्स कैश पिकअप या फिर मोबाइल रिचार्ज।
मोड़ पे रुक जाती है
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और करों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक बा एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में, रूबी ज्वेलर्स। गाड़ी घर या कमर्शियल, जैसा कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दें, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 4163022522 302-2522
जी सुन रहे हैं आप प्रोग्राम साजो आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया इस दौरान आप साथ रहे, आप की कॉल्स का भी इंतज़ार है। अगर आपने किसी को विश करना हो, लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, फैमिली डे लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, फैमिली से मुतालिक आपकी फरमाइशें भी साथ साथ चल रही हैं। और एक पोस्ट मेरे पास आई थी आज, इसको फेसबुक पे भी शेयर किया है, चले मैं आपके साथ थोड़ा सा रीड भी कर देती हूँ। ये जो रिश्ते होते हैं, जो एक जो फैमिली बनती है, एक यूनिट बनता है और एक माशरा एक फैमिली के ऊपर ही चलता है, और फैमिली जो है ये रिश्ते, ये प्यार के रिश्ते होते हैं। और उसके ऊपर एक पोस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या अहमियत है इन रिश्तों की, एक बाप अपने बेटे को किस तरह समझाता है। बेटा वालिद को गौर से पतंग उड़ाते देख रहा था, कहने लगा बाबा जी ये धागे की वजह से मजीद ऊपर नहीं जा रहा। पतंग को धागे से बांधा होता था, और याद है कि हम धागे से पतंग को कंट्रोल करते हैं। तो बेटा देख रहा होता है कि बाप को, कि बाप किस तरह पतंग को उड़ा रहा होता है, और फिर बेटा बाप से कहता है कि ये धागे की वजह से मजीद ऊपर नहीं जा रही, क्या हम इसे तोड़ना दें। वालिद ने धागा तोड़ दिया, पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और फिर लहरा कर नीचे आई और दूर कहीं जाकर गिर गई। तब वालिद ने बेटे को समझाया, बेटा जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीज़ें जिससे हम बंधे हुए हैं हमें ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे कि घर, वालदैन, ख़ानदान, रिश्ते। हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं, और असल में यही वो धागे हैं जो हमें बुलंदियों पर संभालते हैं। इनके बगैर हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, फिर हमारा वही हशर होगा जो बिन धागे के इस पतंग का हुआ है। लिहाजा अगर तुम जिंदगी में बुलंदियों पर चाहते हो जाना, ऊपर रहना चाहते हो, तो कभी इन धागों से ताल्लुक मत तोड़ना। जी हाँ, एक वक्त होता है कि इंसान को इन रिश्तों को, इस बंधन की और इस फैमिली की समझ आती है कि ये रिश्ते तो फिर रिश्ते ही होते हैं, दोस्त तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन साथ हमेशा रिश्ते ही देते हैं और प्यार के रिश्ते देते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी एक ये तहरीर थी, फैमिली डे के ऊपर थी। इंजॉय कर रहे होंगे आप अपने फैमिली डे को। 2008 में ये फैमिली डे स्टार्ट हुआ था ओंटेरियो में, इससे पहले ये BC वगैरह में तो इसको रखा जाता था हमेशा की तरह, लेकिन 2008 से जब ये मगेंटी की गवर्नमेंट आई थी तब से ये फैमिली डे को हमने शामिल कर लिया था। और अच्छी बात ये कि इसको वैलेंटाइन रखा, और वैलेंटाइन के बाद फिर ये अब मंडे जो है, यानी फरवरी का थर्ड मंडे जो होता है, इसको फैमिली डे वीकेंड कह दिया। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ऐसे ही, और इस फैमिली डे वीकेंड की मुनासबत से तो इन्जॉय कीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डाटा आ रहा है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता। अक्सर ऐसे होता है कि कोई कहीं ना कहीं, ये आप देख लें, डोमेस्टिक केसेस कितने हो रहे हैं, फैमिलियाँ टूट रही हैं, और अक्सर लड़ाई झगड़े जो घरों में होते हैं जब छुट्टी होती है तभी होते हैं। तो ये क्या वजह है कि हमने इन रिश्तों को, उस धागे को हमने तोड़ दिया है, और अगर हम उन धागे को दोबारा से बांध लें तो ये रिश्ते दोबारा से बन सकते हैं, क्योंकि रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल, मतलब रिश्ते तो खुद ही बन जाते हैं लेकिन निभाना मुश्किल होता है। तो रिश्तों को निभाने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस चाहिए, बहुत ज़्यादा एक पेशेंस चाहिए। तो बस अगर हम वो रख लेंगे तो बस फिर ये रिश्ते हमेशा हमारे साथ ही चढ़ते रहेंगे, उस पतंग की तरह जो हवा में उड़ती रहती है। मेरा ख्याल है मैं कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ, तो चलिए एक गीत की तरफ लेके चलती हूँ। बहुत ही प्यारा पंजाबी गीत है, सुनते हैं कुलविंदर बिल्ला की आवाज में, पंजाब के ऊपर।
मैं जद दुनिया तो जावा, मुड़ फेर दोबारा आवा, मैं जो भी जून हडावा, मेरा देश होवे
available on iTunes.
ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਛੋਲੇ ਬਲਦਾਨੇ ਖਾਣੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਚੱਪ ਲੈਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਲਵਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਸਭ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੋਰੀ ਡੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਣੀ ਜਦ ਬੋਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਡੁੱਲਿਆ ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣਾ ਮਾਨੜ ਦੀ ਤਾਂ ਝੱਟ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ ਯੇ ਗੀਤ ਜਿਸਨੇ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਲੈਂਡ ਕੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਯਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਯੋਰ ਕਾਲਸ ਔਰ ਆਪਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਤੀ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਵੀਕੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਚੀਜ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਪੈਸੋਂ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਮਸਾਇਲ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ ਮੰਡੇ ਹੈ ਜਸਮੀਰ ਪਰਮਾਰ ਸੇ ਹਮ ਆਪਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਕੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੋ ਬਤਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਆ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤੋ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਘਰ ਕੇ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਅਗਰ ਆਪ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਸਮੀਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਪੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਵੀਕੈਂਡ ਪੇ ਜੁੜਨੇ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਸਮੀਨ ਜੀ ਹਾਉ ਆਰ ਯੂ
I'm good. How are you, Shalaji?
I'm very good. Thank you so much. Aapne aaj bhi humare saath wo family isi ka naam hai and you're a part of 770 family. Bahut bahut shukriya. Aap aapki services thoda sa apne bare mein bataye Jasmine.
Haan ji zarur Shalaji. Pehle to you know from me and my team I want to wish everybody all of you a very happy family day and may everyone is enjoying this beautiful day with their beautiful families and having a blast. Mm-hmm. And now coming back to our services, jaise ki aapne bataya ki residential commercial mortgages hamare listeners hame every week sunte hain to definitely ab wo hamare sath bahut familiar ho chuke hain aur unko pata hai to aaj main residential ke ilawa main thoda sa focus aaj commercial mortgages pe karna chahungi kyunki commercial mortgages ke liye kya hota hai sir ji bahut sare hame questions aate hain ki aap kis tarah ki commercial mortgages karwa ke dete hain kya aap are you restricted to like just like a single unit mortgage or you can take care of any type or any size of the mortgage when it comes to commercial right so yahan par main thoda sa yehi batana chahungi ki jab hum commercial mortgage ki baat karte hain to definitely commercial mortgage mein hum baat karte hain kisi bhi tarah ka chahe wo aap apne you know apne retail space ke liye ya apne office kholne ke liye ek single unit buy kar rahe hain chahe aap building buy kar rahe hain या आप किसी भी तरह की कमर्शियल प्लाजा बाय कर रहे हैं जिनको हम कई बार स्ट्रिप प्लाजा कह देते हैं विद यू नो वेदर इट्स ए टेनेंट्स और एनी सोर्ट ऑफ रेंटल प्रॉपर्टीज के साथ अगर आप बाय कर रहे हैं तो वो पूरा प्लाजा जो है डेफिनेटली हम उसको फाइनेंस करवा के दे सकते हैं। और जहां तक कमर्शियल मॉर्गेज की बात आती है तो कमर्शियल मॉर्गेजेस में और कमर्शियल प्रॉपर्टीज में किसी भी तरह की यू नो जो मल्टीपल यूनिट्स आ जाते हैं कई बार मल्टीपल स्टोरीज यू नो रेजिडेंशियल यूनिट्स होती हैं जिनकी मॉर्गेजेस भी कमर्शियल के अंदर ही होती हैं एंड इट कैन नॉट बी डन अंडर रेजिडेंशियल। एंड सेकेंडली अगर गैस स्टेशन है विद प्रॉपर्टी अगर हमारे लिसनर्स कोई गैस स्टेशन देख रहे हैं और विद प्रॉपर्टी है ना और वो बाय करना चाहते हैं होटल मोटल एनी सोर्ट ऑफ कमर्शियल हम फाइनेंसिंग करवा के देते हैं डेफिनेटली बैंक के थ्रू करवा के देते हैं। और हमारे पास ऑल्टरनेटिव लेंडर्स भी होते हैं जो कमर्शियल फाइनेंसिंग करके देते हैं जस्ट इन केस अगर हमारा क्रेडिट ठीक नहीं है और फॉर एनी रीजन हम ये लेंडर के पास नहीं जा सकते तो वी हैव अदर लेंडर्स जो आपकी कमर्शियल मॉर्गेजेस को आपको हम डेफिनेटली फैसिलिटेट करवा के देते हैं और बहुत ही कंपैरेटिव रेट्स हैं वेरी कंपैरेटिव रेट्स एज कंपेयरिंग टू बैंक।
उठाइएगा और अगर आप इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि बहुत कम पैसे के अंदर आप अपने खुद ब खुद अपना यानी बॉस बन सकते हैं और इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लोकेशन के बारे में इसकी क्या ट्रेनिंग है किस तरह से क्या इसका तरीकाकार है आप कॉल कर लीजिए। फ्रेंचाइज अगर आपने खरीदी है पिज्जा प्रोस की तो राबते का नंबर है 4165087683 4165087683 पर आप राबता कर लीजिएगा। जूम 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 जी हाँ XOOM आप इस ये जो एक पेपॉल सर्विस है जो कि बहुत ही एक तरह से गारंटी है कि आपके पैसे आपके प्यारों तक बहुत एक सेफ तरीके से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये एक पेपॉल सर्विस है और तेज और आसान और महफूज मनी ट्रांसफर का तरीका है कि यहाँ आप पैसे अभी कर ही रहे होते हैं और वहां मिनटों सेकंडों में पैसे आपके जूम करके आपके प्यारों तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो ऐप है ये अपने स्मार्टफोन्स के ऊपर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपने पैसे आपके प्यारों तक जूम करके कितने भी जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उसमें ये बैंक के अंदर जाता है और इसमें कैश पिकअप और मोबाइल रिचार्ज की सर्विस भी मौजूद है। तो जूम XOOM की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज आप ढूंढ रहे हैं कि भी कहाँ जाएं, खाना कहाँ खाएं, फैमिली डे मतलब जो लास्ट मंडे है आज का, तो कहाँ लेके जाया जाए अपनी फैमिली को जहाँ पर आप बैठ के उस झंझट से कि भी क्या पकाया जाए, बर्तन भी धोने हैं, सुबह जाना भी है वो सारा काम, तो शालीमार ग्रिल पर आप जा सकते हैं जहाँ पर मज़ेदार किस्म का आप खाना इंजॉय कर सकते हैं। ये 54th Road इन स्कार्ब्रो और इसकी दो लोकेशंस हैं, लेकिन ये वाली जो स्कार्ब्रो की लोकेशन है 54th के ऊपर, यहाँ पर आपको हर तरह का, चाहे अगर आपने बिरयानी खानी हो, कढ़ाई खानी हो, बारबेक्यू आइटम्स खाने हो, या फिर वीकेंड पे इनके पास हलवा पूरी का नाश्ता है और बिरयानी बहुत स्पेशल है जो कि सिर्फ आपको 549 में मिलती। शालीमार ग्रिल एंड बैंक्वेट हॉल, जी हाँ बैंक्वेट हॉल, जहाँ पर आप हर तरह की जो किसी अगर कोई पार्टी आ जाती है तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने इवेंट को और भी मेमोरेबल बनाइए, क्योंकि कई दफ़ा पार्टी हॉल अच्छा होता है लेकिन खाना नहीं अच्छा होता, तो यहाँ पर आपको वो दोनों ऑप्शंस मिलेंगी कि खाना भी बहुत अच्छा है और इनके पास ठीक ठाक बड़ा एक बैंक्वेट हॉल भी है। इस सारी सर्विस के लिए आप रابطہ कर सकते हैं शालीमार ग्रिल एंड बैंक्वेट हॉल को, जिनका नंबर आपको देते हैं 416-686-2625 पर आप रابطہ करते हैं। गीत की तरफ लेके चलती हैं और उसके बाद फिर एक और मुलाकात, लेकिन इस गीत से पहले एक अभी प्रदीप जी बैठे हुए थे और हम आपस में बात कर रहे थे और रिश्तों की ही बात कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत हिंदी में एक कुछ अशार पढ़े और जिनका मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये रिश्तों के ऊपर ही था, मतलब कि ये रिश्ता जो होता है इसको तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ने वाले जो रिश्ते होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और जोड़ते वही हैं जिनको रिश्तों की कदर होती है। तो रिश्तों की कदर ही एक रिश्ते को निभाने में मदद मिलती है, जिनको रिश्तों की कदर होती है। ये शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, मगर इनमें एक फ़र्क है, एक फ़र्क ज़रूर होता है कि शीशा हमेशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलत फहमी से, और कई दफ़ा हम उस गलत फहमी के अंदर अपने कई साल ज़ाया करते करते एक ख़ास रिश्ते से दूर भी हो जाते हैं। हम इस तरह की खबरें तो बहुत पढ़ते हैं कि रिश्ते टूट गए, लेकिन जोड़ने के तरीके नहीं बताते, हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं आते। तो सॉल्यूशन निभाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसको कहते हैं पेशेंस। अगर ये पेशेंस दोनों तरफ से ही हो जाए तो देखें कितने रिश्ते, कितने ऐसे ताल्लुकात हैं जो कि उनमें बेहतरी हो सकती है, और वक्त और सब्र जो होता है वो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादल तो मिल जाता है, लेकिन रिश्ते के मुतबादल नहीं रहते। एक दफ़ा टूट गया, एक दफ़ा दरार आ गई तो फिर वो पड़ जाती है। एक और खूबसूरत गीत की तरफ लेके चलना चाहती हूँ और इन्जॉय कीजिए अपना फैमिली डे वीकेंड। एक मेलोडी है, मेलोडी का फ़ायदा ये होता है कि इसमें बहुत सारे सॉन्ग एक साथ आप सुन सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं सुरमद कदीर की और फरहाना मकसूद की आवाज़ में एक रोमांटिक मेलोडी।
तेरी रात मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांदनी।
तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे I'm जरा है रोशनी से जैसे भरा
सुर जन कर दे माफ खता इत कर प्यार मेरा कोल ते करार तेरा क्यों तेनु याद न रहा किथे फर याद करा जदों तेनु याद करा दिल विचों निकल दुआ
लावी ना बे कदरा न यारी रोमे
Solutions, Canadian Immigration Services, 905-513-0012. Regulated Canadian Immigration Consultants, Certified Urdu English Translators and Code Interpreters, Commissioner of Oaths and Affidavits. For information, call now, 905-513-0012. Canim Solutions, Canadian Immigration Services, 905-513-0012.
रॉजर की बेस्ट प्राइस और प्रमोशन के लिए कांटेक्ट करें वक्कार खान जो रॉजर की एम्प्लॉई हैं और 13 साल से ज्यादा तजुर्बा रॉजर की तीन सर्विसेज का बंडल ऑफर जिसमें टीवी विद एचडी रिसीवर हाई स्पीड इंटरनेट वायरलेस वाईफाई मॉडम फोन कॉल विद लोकल कॉलिंग लॉन्ग डिस्टेंस भी मौजूद जिसमें अनलिमिटेड यूएस कनाडा कॉलिंग और पाकिस्तान के 930 मिनट टीवी फोन इंटरनेट और रॉजर की लेटेस्ट होम सिक्योरिटी डील्स के लिए राब्ता करें वक्कार खान 6478648000
जी बहुत प्रोग्राम में खुश आमदेद कहती हूँ एक दफ़ा फिर से आप तमाम को साजा आवाज और टाइम गुजरते पता ही नहीं चला आज का दिन मंडे हालांकि छुट्टी है लेकिन हम लोग काफ़ी बिजी रहे और कुछ कॉल्स मैं नहीं ले सकी और आज स्पेशल एक तौसीफ साहब से भी था कि कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हमने लेनी थी लेकिन आज वो भी हम नहीं ले सके तो स्केड्यूल में थोड़ा सा हम पीछे रह गए थे लेकिन ये कि चलें इंशाल्लाह अ गुड थिंग इज़ कि देर इज़ ऑलवेज़ अ टुमारो और बाकी का काम कल पर छोड़ते हुए चले जाते हैं और जाते जाते इस फैमिली वीकेंड पर उन तमाम फैमिली हमारे जितने भी जो रिश्ते हैं जो हमसे छोड़ के हमें जा चुके हैं उन सब को याद करते हुए उन सब के लिए मगफ़रत की दुआ करते हुए और ख़ास कर हमारे प्यारे मुजफ्फर भाई के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत करे और उनके दर्जात बुलंद करें आमीन सो मामीन और आप सबको भी फैमिली डे वीकेंड आप आई होप कि आपके आपकी जो रात है आपकी जो इवनिंग है अच्छी गुजरे इंजॉय कीजिए अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने प्यारों के साथ और इन रिश्तों को मजबूती से बांध के रखिएगा इजाज़त चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम लिसनर्स का हमारे स्पॉन्सर्स का और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर से लॉन्ग वीकेंड की बहुत बहुत मुबारकबाद और इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे अल्लाह हाफिज़ मैं दीद सरवत फारूक और हमारी पूरी टीम की तरफ से खुदा हाफिज़
ए खुदा जात का कुनी मुझे इरफान हो जाए ए खुदा जात का कुनी मुझे इरफान हो जाए मेरी हर सांस तेरे ताबे
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birach Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
फोन में डाउनलोड कीजिए। लोकल लाइन पर रेडियो सर्विस के लिए डायल कीजिए 6475571017। EOS TV को आप तमाम IPTV बॉक्सेस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज ही रोकू ऐप अपने स्मार्ट टीवी में डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री। हमारे साथ शामिल रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हम खूबसूरत, दिलकश, मजाया, मालूमती और मजहबी प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एडवर्टाइजमेंट या फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 6478986245। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमेशा की तरह BBC न्यूज से सेरवीन के साथ।
मैं हूं आलिया नाज़की। आज सेरवीन का अहम मौजू है। बलूचिस्तान की सूबाईदार हुकूमत क्वेटा में आज एक बम धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। हम ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सेरवीन में आज ये भी शामिल है, शाम के सदर बशार अल-असद की वफादार फौजों की पेशकदमी, इदलिब सूबे में हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए BBC की खसूसी रिपोर्ट। और मिलेगा मुल्तान के एक ऐसे जोड़े से जिसने धूप और छांव, अच्छे और बुरे हर तरह के हालात में एक दूसरे का साथ निभाने की मिसाल कायम की है। आप हमें TV पर देखने और रेडियो पर सुनने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सेरबीन देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा में होने वाले एक बम धमाके में कम से कम 8 अफराद की हलाकत और 14 के जख्मी होने की इत्तला है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। इस वाकये की तफसीलात अभी तक मौसूल हो रही हैं। तहम अब तक की तफसीलात के साथ काशिफ कमर।
शारा अदालत शहर के मसरूफ और मरकजी इलाके में है और इसके आसपास कई अहम इमारात और दफातर भी वाकई हैं, लेकिन अभी तक ये वाजे नहीं है कि धमाके का हदफ क्या था।
धमाके से कुछ फासले पर अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम खलीफे अव्वल हज़रत बकर सिद्दीक की यौम वफात के हवाले से एक जलसा मुनक्किद हो रहा था क्वेटा प्रेस क्लब के सामने। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि एक मशकूक शख्स को पुलिस अहलकारों ने देखा तो उन्होंने उसको प्रेस क्लब से रैली से कुछ फासले के करीब उसको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने इस मौके पे अपने आप को उड़ा दिया, जिसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद हलाक और 21 जख्मी हुए हैं, जिनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक है। इस बुनियाद पे हलाकतों में इजाफे के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता।
गुज़िश्ता कुछ अरसे से क्वेटा शहर में सिक्योरिटी की सूरत हाल खासी बेहतर रही है और इस नौइयत का वाकया एक लंबे अरसे के बाद पेश आया है। इसकी नौइयत क्या थी, आया ये कोई रिमोट कंट्रोल बम था या किसी खुदकुश हमलावर की कार्रवाई, पुलिस हुक्काम इस बारे में किसी भी कयास आरई से गुरेज कर रहे हैं और जाए वकुआ से शवाहिद जमा किए जा रहे हैं।
हम लोग उस तरफ साइड पर खड़े थे, अचानक हमारा दोस्त नमाज के लिए गया था, मैं नमाज से वापस होकर उधर आ गया, अचानक नमक का हो गया, हमारे नजदीक हो गया।
धमाके के फौरी बाद क्वेटा के सिविल अस्पताल में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और हुक्काम ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मरने वालों की तादाद बढ़ भी सकती है।
और अफगान महाजरीन के बारे में आज इस्लामाबाद में 2 रोज़ा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान महाजरीन की मुकम्मल वापसी तक पाकिस्तान के लिए इंतहा पसंदी के खात्मे को यकीनी बनाना मुमकिन नहीं है। कॉन्फ्रेंस से कबल अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने मसले कश्मीर पर भी बात की। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है हमारे साथी हुदा इकराम। हुदा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान ने दरअसल कहा क्या है।
जी, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी 40 साल मुकम्मल हो गए हैं क्योंकि अफगान पनाह गजीनों को पाकिस्तान में, इस हवाले से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये साफ अल्फाज में कहा है कि जब तक अफगान पनाह गजीन यहां पर रिफ्यूजीज मौजूद हैं पाकिस्तान की हदूद में तो किसी किस्म की भी इंतहा पसंदी ना हो, इस बात की जमानत देना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल है बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। उनका यह कहना था कि 27 लाख अफगान महाजरीन यहां पर मौजूद हैं और उनमें से कितने हजार दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी में मुलविस हैं, इनका अंदाजा لگانا، ان کی شناخت کرنا، ان کو پکڑنا اور ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنا پاکستان کے لیے بے حد مشکل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم باڑ لگا رہے ہیں پاک افغان بارڈر پر، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ بہتری ہو۔
ہدا، میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کل یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے کشمیر کے معاملے پر ثالثی کی جو پیشکش کی تھی، اس کی کوئی تفصیل واضح ہوئی ہے اور اس پر کوئی رد عمل سامنے آیا؟
اس کی تفصیل بالکل واضح ہے اور رد عمل بھی بالکل چند گھنٹوں بعد ہی سامنے آ گیا تھا۔ جو انڈیا کے انڈین فورن منسٹری کے سپوکس پرسن ہے رویش کمار، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ کشمیر ایشو پر وہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں چاہتے، اگر کبھی کوئی بات چیت ہوئی بھی تو وہ بائی لیٹرل ہوگی، یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوگی۔ اس سے پہلے جو انڈیا ہے وہ صدر ٹرمپ کی آفر جو ہے اسے بھی ٹھکرا چکا ہے۔ پاکستان نے بہرحال اس بات کا خیر مقدم کیا ہے اور جو یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی ڈیپ کنسرن کا ورڈ یوز کیا تھا اور اپنی میڈیشن جو تھی انہوں نے آفر کی تھی۔
اسلام آباد سے ہدا اکرام، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ شام میں کشیدگی بڑھ گئی ہے، صدر بشار الاسد کی وفادار فوج باقیوں کے آخری ٹھکانے ادلب کو تباہ کر رہی ہے۔ تعلق میں دمشق کو حلب سے ملانے والی شاہراہ پر 2012 کے بعد پہلی بار ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ادلب صوبے سے ہزاروں شہری اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ مشرق وسطی کے ہمارے نامہ نگار کوئنٹن سامرول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ اس رپورٹ کے بعض مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔
شام میں باغیوں کے ایک مضبوط گڑھ ادلب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ 7 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ شمال کی سمت رواں اس ٹریفک میں فتراوی کنبا بھی ہے۔ شام میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ سب سے بڑا انخلا ہے۔ فتراوی آنے والے حالات کے مقابلے میں پیچھے رہ جانے والے مصائب سے زیادہ خوف زدہ ہیں۔
ہم اپنے گھر سے ترک سرحد کی طرف ہجرت کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے بچوں اور خواتین کی سلامتی کے بارے میں تشویش ہے۔
جو کچھ ساتھ لے جا سکتے تھے وہ ساتھ لے لیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ شاید یہاں پھر نہ آ سکیں گے۔
ہم فوج کی وجہ سے اپنے گھر سے جا رہے ہیں، فوج انہیں مار دے گی جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔
تعقب کرتی بشار الاسد کی افواج زیادہ دور نہیں ہیں۔ جیسے جیسے کوئی علاقہ حکومت کے قبضے میں آتا ہے، فضائی حملے اور توپخانہ وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ دنیا شام میں ہلاک ہونے والوں کو بھول گئی ہے، مگر ادلب والے اپنوں کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ کمبل میں لپٹی ایک اور جھلسی ہوئی لاش۔ کفر نوران میں انہیں سرکاری جنگی جہازوں کی آمد کا پتہ چلا تو وہ گھروں کی جانب دوڑے، مگر یہاں کی عمارتیں زیادہ مضبوط ثابت نہیں ہوئیں۔ ابو احمد کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے والد کی لاش ہے یا بھائی کی، مجھے نہیں معلوم۔ ادلب ترک نواز باغیوں اور مسلم شدت پسندوں کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، مگر کبھی کبھی کامیابی بھی مل جاتی ہے۔ یہ باغی ترک زبان میں کہہ رہا ہے کہ یہ سرکاری ہیلی کاپٹر معصوم شہریوں، عورتوں اور بچوں پر بیرل بم گرا رہا تھا۔ یہاں سکون کہیں نہیں، مردوں کے لیے بھی نہیں۔ سرکاری فوجی ایک باغی کی قبر کی بے حرمتی کرتے ہوئے اپنی فلم بنا رہے ہیں۔ یہاں کے رہنے والوں کے لیے زیادہ گنجائش نہیں۔ ادلب کے ایک بازار پر شامی طیاروں کی بمباری کے بعد احمد کو ابھی ابھی ملبے سے نکالا گیا ہے۔ ان کے آس پاس موجود 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنگ بندی کی اپیلوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ قریبی بستر پر 11 برس کی زخمی ریم ابد درد سے چیخ رہی ہے۔ دونوں کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ممکن ہے انہیں یہاں لایا جائے، شام میں ترک سرحد کے ساتھ قائم اس وسیع کیمپ میں، جہاں ادلب کے اور بہت سے بچے موجود ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں لوگوں کو لا کر بھلا دیا جاتا ہے۔ ادلب ایک بار پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے، مگر دنیا نے اسے اور شام کو فراموش کر دیا ہے۔
کوئنٹن سموول کی رپورٹ۔ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں، وہاں آپ کو ویڈیو رپورٹس، تجزیے اور اہم خبریں سب ملیں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو کریں، ہمارا ہینڈل ہے @PBCUrdu۔ پی بی سی اردو کے پروگرام سربین میں آگے چل کر ملیے گا کبھی ایک دوسرے سے نہ بچھڑنے والے ملتان کے ایک جوڑے سے، اور جانیے گا ان کی کہانی۔ سی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آلیہ ناز کی. افغان شہریوں کے پاکستان میں مہاجرین کی حیثیت سے 40 سال پورے ہونے کے موقع پر اسلام آباد میں ہمارے ساتھی سحر بلوچ نے پاکستان میں افغان مہاجرین کی دوسری نسل کے بعض نوجوانوں سے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ انہیں اب بھی بعض اوقات نسل پرستانہ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
میرا نام دیبا ہے اور میری پیدائش یہی پہ ہوئی ہے. رشیا کا انویژن سٹارٹ ہوا تھا تو اس وجہ سے پھر میری فیملی جو ہے وہ پاکستان میں آئے تھے اور پشاور پہ میری پیدائش ہوئی ہے. اور فرسٹ میں بالکل بھی کنسیڈر اپنے آپ کو افغان کنسیڈر نہیں کرتی تھی. 5 سال تک جب ہم لوگ اسلام آباد میں آئے اور میری ایڈمیشن ٹائم پہ جب یہاں پہ میرا ایڈمیشن ہوا اسکول میں تو ایڈمیشن انہوں نے پرووائڈ نہیں کیا. مطلب گورنمنٹ اسکول میں انہوں نے کچھ ریسٹرکشنس ہمارے لیے دیے کہ آپ افغان ہیں تو افغان یہ کام نہیں کر سکتا. کتنا چیلنجز فیس کرنا پڑا ہے. تو گریجولی ایسا ایسا کر کے مجھے پتہ چلا اور ساتھ میں مطلب جو بھی پرابلمس یہاں پہ پاکستان اور افغانستان کی گورنمنٹس کے بیچ میں ہوتا ہے, پولیٹیشینس کے بیچ میں کچھ کوئی بھی پرابلمس ہوتے ہیں تو وہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے.
اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو دیبا نے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب بھی پاکستان میں یا کسی اور علاقے میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو الزام جاتا ہے وہ جاتا ہے افغان ریفیوجیز کے اوپر اور ان کو نکالنے کی بات کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ مجھے کیا بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے جب ایسا ہوتا ہے؟
اس سچویشن میں پھر جو مطلب کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ہمیں مختلف اینگل سے افیکٹ کرتی ہیں. جس طرح اگر ہم مطلب کسی بھی کالج یا وغیرہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج وغیرہ یا اسکول میں جاتے ہیں تو جو کلاس میٹس ہوتے ہیں ہمارے وہ ہمیں بالکل تعصب کی نظر سے دیکھتے ہیں. ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی وہ دہشت گردی کا واقعہ ہم نے ہی کیا ہو. اور ان کا بالکل جو پہلے سے رویہ ہوتا ہے وہ بالکل انورٹ ہو جاتا ہے, بالکل اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے. ہمیں بالکل ویسے ٹریٹ نہیں کیا جاتا جس طرح یہاں کے نیشنلس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے.
جب آپ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آپ کے لیے؟
سارے لوگ تو ایک جیسا نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اس سے تضاد رکھتے ہیں, پشتو لینگویج سے تضاد رکھتے ہیں. اور جب